आज है 18 नवंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं सुशीला सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव और बस्तर के आईजी को समन।
कार्यकर्ता और पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, फर्जी केस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, पिछले दिनों मानवाधिकार आयोग के द्वारा इनको तलब किया जाना कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल है।
बीजेपी सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इधर नोटबंदी से लोगों की परेशानी अभी भी है जारी।
दवा नहीं दे रहा इनको, कोई जल्दी कह रहे हैं क्या खुले लाओ, 500 हजार के ले ही नहीं रहे, ना तो अस्पतालों में ले रहे हैं ना कोई मेडिकल वाले ले रहे हैं।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव और माओवाद प्रभावित बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी के खिलाफ समन जारी किए हैं। इस समन में दोनों अधिकारियों के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से सत्ता का दुरुपयोग कर दुश्मनी निकालने का आरोप लगाया गया है। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसे पलटा नहीं जा सकता। कुछ विपक्षी दलों ने इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की थी। उन्हें जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि इस फैसले को वापस लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जेटली ने दावा किया है कि वे हालात का जायजा लेने के लिए रोजाना दिल्ली की बैंक शाखाओं का दौरा कर रहे हैं। सीरिया की निगरानी रखने वालों का कहना है कि अलेप्पो शहर के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बमबारी और गोलीबारी में 25 नागरिकों की मौत हो गई है। मंगलवार को सीरियाई सरकारी सेना ने शहर के पूर्वी इलाके में ताज़ा हमले किए हैं। इमारत के मलबे के पास खड़े यह व्यक्ति बता रहे हैं कि शहर के पूर्वी हिस्से में इससे काफ़ी क्षति पहुँची है। लगातार तीसरे दिन एलेपो के इन इलाकों पर अलग अलग तरह के हथियारों से हमला किया गया है। आज 17 तारीख है। एलेपो के पुराने इलाके को रूसी सेना के मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिससे यहां इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है और लोगों की मौत हुई है और कई लोगों को चोटें भी आई है। ये थे एलेपो के पूर्वी इलाके में एक व्यक्ति। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता होंगे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर जाकर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि जापान और अन्य एशियाई देशों को अमेरिका सैन्य सहायता के लिए अधिक आर्थिक मदद देनी चाहिए। उन्होंने ट्रांस प्रशांत व्यापार समझौते का विरोध किया था, जो राष्ट्रपति ओबामा की नीति का महत्वपूर्ण मुद्दा है। ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा मौजूदा राष्ट्रपति हैं और ऐसे में जापानी प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात अनौपचारिक रहेगी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने उत्तराधिकारी बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि यदि रूस अमरीकी मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन नहीं करता तो ट्रंप को रूस का सामना करना चाहिए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव और माओवाद प्रभावित बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी के खिलाफ समन जारी करते हुए मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुश्मनी और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में जवाब मांगे हैं। आयोग ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से 30 नवंबर तक उपस्थित होकर जवाब पेश करने के लिए कहा है। आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर समेत 6 लोगों पर हत्या और अन्य मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है। रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
बस्तर के नामा गांव में रहने वाले आदिवासी सामनाथ बघेल की 4 नवंबर को संदिग्ध माओवादियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद बस्तर पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जेएनयू के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद और छत्तीसगढ़ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव संजय पराते समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अब इसी मामले में मानवाधिकार आयोग ने बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी पर कथित रूप से पद का दुरुपयोग और शत्रुता निभाने को आधार बनाते हुए कहा है कि बस्तर रेंज के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध और प्रदर्शन पर गौर करने के बाद उसने स्वतः संज्ञान लिया है। बस्तर में कथित फर्जी मुठभेड़, पुलिस अत्याचार और आदिवासियों से जुड़े मामलों पर काम करने वाले संगठन छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का कहना था कि बस्तर में पुलिस राज चल रहा है और एक के बाद एक मामलों में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
राजनीतिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, फर्जी केस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी, और इसी दिशा में मानवाधिकार आयोग के द्वारा इनको तलब किया जाना कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल है। इससे राज्य सरकार और बस्तर की पुलिस जो है कहीं ना कहीं बेनकाब होगी।
पिछले महीने भर में बस्तर में पुलिसकर्मियों द्वारा नंदिनी सुंदर समेत दूसरे लोगों के पुतले जलाए जाने, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के रुख की आलोचना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नोटिस और अब मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी के मामले में कहा कि सबको अनुशासन में रहकर अपना काम करना चाहिए।
आईजी हो, डीजी हो, पुलिस के अधिकारी हो, दूसरे विभाग के अधिकारी, उनको अपना काम करना है। कहीं कमियां रहती है तो उनको सरकार उनको ठीक करने का भी काम करती है, तो वो निर्देश भी जारी करते हैं। अनुशासन में सबको रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री रमन सिंह भले अपने मातहत अधिकारियों को सीख देने का काम करते रहे हों, लेकिन निरंकुश तरीके से काम करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के उदाहरण कम ही नजर आते हैं। पुलिस हो या सरकार के दूसरे महकमे, हस्तक्षेप का काम तो फिलहाल अलग अलग किस्म के आयोगों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले ही नजर आता है।
ये थी आलोक पुतुल की रिपोर्ट। पाकिस्तान में चीन के एक बड़े निवेश की वजह से देश के कार्बन उत्सर्जन में 4 गुना बढ़ोतरी आएगी। पाकिस्तान से इस वक्त 40 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन होता है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बीबीसी संवाददाता नवीन खड़का को ये विशेष जानकारी दी है। मैंने इस बारे में लंदन में मौजूद नवीन खड़का से बात की।
जो क्लाइमेट एक्शन प्लान कहते हैं, जो योजना है क्लाइमेट से निपटने के लिए, जो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को दिया है, उसमें क्या लिखा गया है कि हाल में पाकिस्तान का जो सालाना जो कार्बन उत्सर्जन है वो 40 करोड़ टन है और सन 2030 तक वो बढ़कर 160 करोड़ टन हो जाएगा। तो इसकी वजह जब मैंने पूछा तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि इसकी एक प्रमुख वजह जो है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक ये परियोजना है, उस अंतर्गत जो चीन जो चाइना पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट कर रहा है 46 खरब अमेरिकी डॉलर, इसकी वजह से जो काम होगी वही है प्रमुख वजह जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन पाकिस्तान का इतना बढ़ेगा। तो इसलिए विकासशील देश जो हैं वो अमीर देशों से वित्तीय सहयोग, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं ना, वो मांग रहे हैं कि हमें पैसे दो और हमें टेक्नोलॉजी भी दो, प्रविधि भी दो, ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा या जो कुछ हम करेंगे विकास के लिए वो क्लीन टेक्नोलॉजी, जो सफा प्रविधि है, स्वच्छ प्रविधि है, जो पोल्यूट नहीं करता, प्रदूषण नहीं करता, उस तरह की प्रविधि हम अपनाएंगे, ऐसा कहना है। तो उसके लिए पैसे चाहिए और फिर ये विकासशील देशों का ये भी कहना है कि अमीर देश जो है वो कमिट करते हैं, प्रतिबद्धता दिलाते हैं, लेकिन देने का जब समय आता है तो पैसे नहीं देते, जबकि अमीर देशों का कहना है कि वो पैसे दे रहे हैं। तो ये झगड़ा चल ही रहा है और पाकिस्तान का भी यही किस्सा है कि जो चीन का जो विकास का जो बात आया है, ये जो परियोजना है, इससे राजमार्ग बनना है, रेल मार्ग बनना है, बंदरगाह बनना है, बिजली उत्पादन के लिए जो प्लांट्स हैं वो बनना है, तो इन सब में जो प्रदूषण कम करने के लिए प्रविधि चाहिए, प्रविधि के लिए पैसे चाहिए, तो वही मसला है। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय हिसाब में ही इसका समाधान ढूंढ रहे हैं ये अब तक, और बातें चल रही है।
अभी तो मरकश में ये सम्मेलन हो रहा है जलवायु परिवर्तन पर, ये बताइए कि इसमें क्या पेरिस समझौते को लागू करने को लेकर कितना नजदीक पहुंच चुके हैं देश?
देखिए, जो पेरिस समझौता हुआ लास्ट दिसंबर को पेरिस में, उसके बाद ये जो चल रहा है मोरक्को की मरकश में जो चल रहा है, ये जो है वही समझौता को लागू करने के लिए जो नियम की आवश्यकता है उसके लिए ये सम्मेलन। लेकिन इस बीच क्या हो गया कि अमेरिकी चुनाव का परिणाम आ गया और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और उन्होंने कहा था कि उनको ये पेरिस समझौता मान्य नहीं होगा और अमेरिका उससे निकल जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का अधिकतम समय जो है उसी में खर्च हुआ और ये जो बाकी बचा कुचा जो दिन है आज और कल इसमें कुछ बातें हो रही है। तो खास जो नियम कानून बनाना है किस तरह से पेरिस समझौता को लागू करेंगे उस पर खास उपलब्धि नहीं दिख रहा है। अगर कल तक कुछ हो जाए और घोषणा करे तो दूसरा बात है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, लगता है ये इसके लिए और अधिक समय की आवश्यकता होगी।
पाकिस्तान में बढ़ेगा कार्बन उत्सर्जन, ये थे नवीन खड़का। करीब चार महीने के बाद अलगाववादियों ने ऐलान किया है कि इस शनिवार और रविवार को वो अपनी हड़ताल में पूरी छूट देंगे। बुरहान वानी की मौत के बाद से वादी में कर्फ्यू और प्रदर्शन का सिलसिला बरकरार है। हाल ही में कुछ नागरिक भारत प्रशासित कश्मीर के हालात और वहां के लोगों की सोच जानने के लिए वहां दौरे के लिए गए थे। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, भारत भूषण समेत एयर वाइस मार्शल कपिल काक भी थे। एयर वाइस मार्शल कपिल काक से विशेष बातचीत की बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी शकील अख्तर ने।
जो वक्त की आप बात कर रहे हैं ये एक हमदर्द और एक तरीके से फिक्रमंद वक्त था सिविल सोसाइटी ग्रुप के पांच मेंबर्स थे। सबसे हमारे लीडर जो थे यशवंत सिन्हा, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं मिनिस्टर वहाँ पे, वजाहत हबीबुल्ला चेयरमैन रहे हैं माइनॉरिटीज कमीशन के, भरत भूषण हैं जाने माने पत्रकार हैं, फाउंडर एडिटर हैं कैच न्यूज के, सुशोभा बर्वे सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन इतने सालों से काम किया है कश्मीर में। तो जो हमारा वफ था उसका जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था कि हम कश्मीर का दर्द जाने, हम कश्मीर की सूरत हाल दें और फेथफुली उन सूरत हाल को हम भारत की आवाम के सामने पेश करें। वहाँ का माहौल दर्द का माहौल, दुख का माहौल था। वहाँ की आवाम जो है नाराज है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, कुछ गिलाए हैं रियासत की सरकार के लिए भी।
एक अजीब और गरीब तरह की जो तकलीफ जो वहाँ पर फैली हुई है और भारत में मुकम्मल खामोशी है, तो ये जो सूरत हाल है इसको आप किस तरह से वो देख रहे हैं और आपने किस तरह उन्हें बताने की कोशिश की?
इसमें कोई शक नहीं है शकील साहब, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और ये भी एक हमारी फाइंडिंग थी जब हम गए। एक तो हम देख रहे हैं कि जो वाजपेयी की लाइन थी कश्मीर के बारे में 2002 से 2007 तक, कोई उम्मीद की किरण नजर आई कश्मीरियों को और भारत के नागरिकों को, मेरे जैसे जो कश्मीर का भला चाहते हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ, तो हमें ये लग रहा है कि देश की तरफ से जो एक तरीके की बेपरवाही है कश्मीर के बारे में वो उनका सबसे बड़ा गुस्सा है कि आपने यू हैव टेकन अस ऑफ द पेज, नक्शे से उतार दिया हमें साइकोलॉजिकली।
जब गए आप लोग तो पहली बार मेरा ख्याल है पिछले चार महीने में बड़े कुछ अहम रहनुमाओं से मुलाकात की, गिलानी साहब से आपकी मुलाकात हुई, सैयद अली शाह गिलानी साहब से हुई, अमीर वाइस से भी आपने मुलाकात की है। इससे पहले उन लोगों ने इनकार कर दिया था, जबाल पार्टी मीटिंग गई थी सितंबर में, तो उनसे जो मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई आपसे, उनसे आपने क्या बातें की, उन्होंने क्या कहा आपसे?
अब आप अगर 100 नौजवान लोगों की आंखें गई या जाने वाली हैं, इंशा एक 12 साल की लड़की है उसकी दोनों आंखें गई, और इतनी दर्दनाक बात है कि महबूबा मुफ्ती जो वहां की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हमसे कहा है कि जहां भी इंशा को भेजना है, जिस जगह भी सारे विश्व में सारी दुनिया में, हम इसका पूरा खर्चा करेंगे इसको आंखें वापस। जो गुस्सा जो नरों में जाते हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो एक तरीके की जो भारत का जो एक छवि है उसके लिए कश्मीरी बहुत नाराज हैं। अब देखिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, उस पर आप बच्चों को डालते हैं 10-12 साल के, ये हमने सरकार रियासत की सरकार को बताया है, ये तो आप बिल्कुल कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चों को अंदर डालते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको छोड़ दीजिएगा। रात में सुरक्षा बल कई की जगहों को, उनको भी गुस्सा आता है क्योंकि एक एजिटेशन है, एजिटेशन के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई हो रही है।
भारत प्रशासित कश्मीर के दौरे से लौटे कपिल काक से बात कर रहे थे शकील अख्तर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह के साथ, और अब कुछ खबरें नोटबंदी से जुड़ी हुई। जी न्यूज़ के मालिक और बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इसकी जानकारी चंद्रा ने ट्विटर के जरिए दी। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काले धन के मामले में सुभाष चंद्रा का नाम लिया था, जिसके बाद ये केस दर्ज कराया गया है। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था।
काला धन के नाम पे बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा स्कैम इस देश के अंदर चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला ये कि उनकी नज़रों में, आपकी नज़रों में किसके पास काला धन है इस देश के अंदर, वो बताएं। अंबानी, अडानी, शरद पवार, सुभाष चंद्रा या बादल, इनके पास काला धन है या रिक्शे वाला, मोची, नाई, किराने वाला, किसान, मजदूर, इनके पास काला धन है, किसके पास काला धन है, ये लोग बताएं जरा।
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से पूछा सवाल, तो वहीं अपने ट्वीट में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लिखा है कि लोगों पर आरोप लगाना दिल्ली के सीएम केजरीवाल का स्टाइल है, लेकिन किसी नागरिक को इस तरह से परेशान करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इधर भारत सरकार की नोटबंदी की मुहिम पर देश में ही नहीं विदेश में भी प्रतिक्रिया आ रही है। इन दिनों भारत आए हुए कारोबारी बिल गेट्स से बीबीसी संवाददाता जस्टिन रोलट ने जब पूछा कि वो इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने सराहना या आलोचना करने के बजाय इसे कागजी मुद्रा से डिजिटल लेन देन की ओर एक कदम बताया। कारोबारी बिल गेट्स का कहना था,
यू नो, रिप्लेसिंग करेंसी वन विद अदर,
अगर लोग ये देखें कि डिजिटल दुनिया में लेन देन करना ज़्यादा महंगा नहीं है, तो वो कागज़ की मुद्रा से उस तरफ बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि सरकार आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खोलने जैसे कदम उठाकर उस ओर बढ़ रही है। मेरा अनुभव यही है कि ग्रामीण इलाकों में आप चाहे जितने बैंक खोल लें, जब तक इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करना शुरू नहीं करेंगे, उस पैसे को किसानों तक पहुंचाना मुश्किल ही रहेगा। ये थे बिल गेट्स के शब्द। तो जहां नोटबंदी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, वहीं लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। श्रोताओं, हमने राजधानी दिल्ली से पिछले एक हफ्ते में आपको कई रिपोर्ट सुनवाई, जिसमें लंबी कतारों में खड़े लोगों ने अपनी परेशानियां बताई, लेकिन अन्य राज्यों में भी हालात बुरे हैं। बैंकों और एटीएम से पैसे निकालने की दिक्कतें और ज्यादा समय लगने के चलते बीमारी और उसके खर्च से जूझ रहे लोग सबसे ज्यादा दिक्कत में हैं। रांची समेत झारखंड के तमाम शहरों सरकारी निर्देश के बावजूद सभी अस्पतालों में पुराने नोट नहीं लिए जा रहे हैं। रांची से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
घाटशिला के हीरागंज निवासी शंकर नमाटा की बेटी नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। वह सिर्फ 12 साल की थी। उसे ब्रेन मलेरिया हो गया था। खून चढ़ाने की नौबत आई तो डॉक्टरों ने नंदिनी को जमशेदपुर ले जाने की सलाह दी। जमशेदपुर ले जाने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन घर में सिर्फ 500 के कुछ पुराने नोट बचे थे, लिहाजा नए नोट निकालने के लिए घर वाले ATM की कतार में लग गए। कतार लंबी थी, पैसे निकालने में 2 घंटे लगे। इस बीच नंदिनी की हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी सांसों ने पैसों का इंतजार नहीं किया। नंदिनी की फूफा उत्पल विश्वास ने BBC को बताया कि जब ATM से निकली रकम लेकर वे नर्सिंग होम पहुंचे, उससे पहले ही नंदिनी की मौत हो चुकी थी। उत्पल ने कहा,
लाइन में माने दग दग ठोकर खा रहे हैं हम लोग। हाँ। ATM में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक, कैनरा बैंक, ये बैंक, वो ATM, ये सब करते 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 माने जो है हम लोग परेशान हो गए। आप पैसा आखिर में जब उसका डेथ हो गया, तब हम लोग को मखसूस 4,000 रुपये।
नंदिनी की माँ लक्ष्मी नमाता ने BBC को बताया कि वह 7 दिनों से बीमार थी। घर में नए नोट नहीं थे, इसलिए वे उसका घर पर ही इलाज करा रहे थे। कल हालत बिगड़ने पर उसे एक नर्सिंग होम में ले जाया गया। लक्ष्मी नमाता ने बताया, इधर पलामू के मोहम्मदगंज में रामचंद्र पासवान नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत कल बैंक में घुसने के दौरान हो गई। वे अपने घर में पुराने रखे 4,500 रुपए बदलवाने स्टेट बैंक गए थे। उनके बेटे अर्जुन पासवान ने बताया कि बैंक में घुसते वक्त धक्का मुक्की के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। पैसे निकालने को आतुर भीड़ उन्हें कुचलती हुई बैंक में घुसने लगी, इस कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई। दरअसल झारखंड में नए नोटों की समुचित आपूर्ति नहीं होने के कारण बैंकों में भीड़ है। एटीएम के सामने देर रात तक लोग कतार लगाकर पैसे निकाल रहे हैं। सरकारी निर्देशों के बावजूद सभी अस्पतालों में पुराने नोट नहीं लिए जा रहे, इस कारण लोगों को दिक्कतें हैं। समय रहते अगर परिस्थितियों को काबू में नहीं किया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं।
ये थी रवि प्रकाश की रिपोर्ट। जयपुर में भी अस्पतालों के बाहर खड़े लोगों को दवा लेने और मरीज भर्ती कराने में मुश्किल पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद भी अस्पताल पुराने 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहा है। आइए सुनते हैं कुछ आवाजें।
मेरा नाम शकील है कि लड़की के पेट में नलकी है, उसकी सूजन आ रही है, दवाइयों के लिए मतलब तकलीफ हो रही है, पैसे नहीं ले रहे, कोई दवाई नहीं दे रहा उनको, कोई जल्दी से खुले लाओ, 500 का यार नोट ले ही नहीं रहे, ना तो अस्पतालों में ले रहे हैं ना कोई मेडिकल वाले ले रहे हैं, बुरा हो रहा है ना, एकदम में से नोट बंद करना नहीं चलना, पब्लिक परेशान हो रही है, लाइनों में लग रही है बैंकों के आगे, दिक्कत आ रही है, लोग काम करेंगे फिर लाइनों में लगेंगे,
मतलब ये फैसला गलत है पूरा।
सुनता ना गाँव का ही लाल चोट से बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, हमारी NFS बैंक वाले कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले ले लेंगे, हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे,
लोग परेशान हैं। वहीं सरकार के इस फैसले को लागू करने में सबसे अहम भूमिका बैंक के कर्मचारी निभा रहे हैं। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने जब ऐसे कर्मचारियों से मुलाकात की तो पाया कि एक आम नागरिक की तरह इन्हें भी छुट्टे पैसे जुटाने पड़ रहे हैं और साथ ही बैंक में देर शाम तक और छुट्टी के दिनों में भी काम करना पड़ रहा है। पूरी जानकारी के लिए नितिन श्रीवास्तव से बात की दिव्या आर्या ने।
जो बैंकर से हम लोगों की बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो उनको ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा और इतना लंबा चलेगा और ये आगे भी लंबा चलेगा, अब उनको ये बात उस बात को लेकर निश्चिंत हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कम से कम जो उनके वर्किंग आवर्स थे उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है, 2 से 4 घंटे 3.5 घंटे का फर्क है, लेकिन वो कहते हैं 1 मिनट की भी फुर्सत बैंक के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि एक बार एक मान लीजिए बीच की साइज की ब्रांच है तो 40 आदमियों को अंदर करते हैं, 3 काउंटर पे कैश बदल रहा है, 1 पे चेक पे पैसा दिया जा रहा है और 3रे पे जो दूसरे बैंक के काम है जो कि बहुत जरूरी होते हैं, लोगों की डिमांड ड्राफ्ट ही बनने हैं, लोगों की FDs ही बननी है, FDs टूटनी है, और भी बैंकों के जो चेक्स होते हैं, जो रेमिटेंसेस होते हैं वो भी काम चलता रहता है। तो वो कहते हैं कि जो स्ट्रेस का लेवल है वो कहते हैं कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ चुका है, परिवार से कोई मतलब नहीं रहा है ज्यादा 8 दिन 9 दिन से, 1 छुट्टी मिली है उनको पिछले 8 दिनों में गुरु नानक जयंती, वो भी सभी को नहीं मिली है, गोवा महाराष्ट्र वगैरह में बैंक उस दिन भी खुले थे।
तो एक जनरल आपने कहा स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, लेकिन ये जो पूरा कदम है नोटबंदी का इसके ऊपर लोगों की राय बटी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्रहित में ये जो थोड़ी तकलीफ आ रही है इसको सह लेना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि आम लोगों के बारे में सोचा नहीं गया और उन्हें बहुत तकलीफ आ रही है। तो बैंक के कर्मचारी जो आम आदमी भी हैं, आम जनता भी हैं, उनकी क्या सोच है, उनका रुख किस तरफ जा रहा है?
दिव्या, उनकी भी राय बटी हुई लगती है, मेरी कम से कम 4 से 5 ऐसे लोगों से बात हुई है जो उसमें बहुत सीनियर लोग भी हैं जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जो 29 वर्ष की जैसे एक महिला बैंकर हैं जिनको 3.5 साल का तजुर्बा है और वो कैश काउंटर पे बैठती हैं, टेलर मशीन पे बैठती हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मूव अच्छा है या बुरा उनके पास ये सोचने का वक्त ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख के बाद से उनकी जिंदगी एकदम बदल चुकी है, कहती हैं कि हर 3रा 4था आदमी जो कैश काउंटर पे आता है वो इस तरह से गंदी नजरों से घूरता है कि जैसे उन्होंने कैश काउंटर की दूसरी तरफ बैठ के कोई गुनाह कर दिया है। वो कहती हैं हम खुद पैसे नहीं निकाल पाए हैं, उनके पति जो है उन्होंने बताया वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने खुद 3.5 घंटे ATM की लाइन में लगकर अपने और इन महिला बैंकर के कार्ड से 2,000 रुपए निकाले थे 10 तारीख को, ये उन्होंने मुझे बताया। वो कहती हैं कि सबसे बुरा वो दिन था जब एक दिन चौथे दिन वो दोपहर में 1:30 बजे किसी कैश काउंटर पे बैठी थी, लंबी लाइन लगी थी, 2 सज्जन आपस में बात कर रहे थे, एक ने उनको सुनाते हुए अपने दोस्त से एक तरह से फप्ती कसी, उसने कहा कि ये बैंक पता नहीं कैसे कैसे नए लड़के लड़कियों को कॉलेजों से निकाल के भर्ती कर लेते हैं, ना कैश गिन पाते हैं ठीक से ना कुछ, पुराने जमाने के कैशियर हाथ से बड़े बड़े बंडल गिन के फेंक दिया करते थे। वो कहती है उसके बाद अगले दिन तक ये समझिए कि मेरे हाथ भी कांपे कैश काउंट करने में और मेरी एक नजर काउंटर पर खड़े आदमी पे रहती थी कि कहीं वो मुझे देख के यही तो नहीं सोच रहा है कि मैं एकदम ही नकारा हूं या मैं किसी काम की नहीं हूं, जबकि ऐसा नहीं है, वो कहती हैं। तो इस तरह के
सेक्सिज्म भी एक तरफ देखने को उन्हें मिला, लेकिन ये मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि जो खुद कैश काउंटर पे बैठी हैं वो वहां पर चेक जमा करके या वो अपने पैसे वहां से नहीं इंतजाम कर सकती थी, उन्हें भी ATM में लगना पड़ा,
उनके पति को ATM में लगना पड़ा। उनका ये कहना है कि उनकी खुद ही इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके बैंक के बाहर जो ATM है वहां पे हमेशा 150-200 लोग लगे रहते हैं और जब वो वहां पे रहती हैं तो उनकी जिम्मेदारी कैश काउंटर के पीछे रहती है, ना कि 1.5 घंटे ATM में लगने की, और उन लोगों को भी एक तरह से अनौपचारिक तरीके से, और ये ड्यूटी के रूल्स भी होते हैं कि उनसे कह दिया गया है कि पहले पब्लिक डीलिंग, पहले पब्लिक सर्विस हमें करनी है, उसके बाद हम लोगों के पास मियाद है लंबी जिसमें वो लोग खुद अपने नोट बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं।
बैंक कर्मचारियों को भी करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। नितिन श्रीवास्तव से बात कर रही थी दिव्या आर्य। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। मानसी दास स्टूडियो आ चुकी है समाचार पत्रों के साथ। मानसी, ये बताइए कि क्या अखबारों में भी नोटबंदी की खबरें छाई हुई हैं?
जी हाँ, अखबारों में पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक नोटबंदी की ही खबरें छाई हुई हैं, साथ ही अन्य खबरें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत करती हूँ अंग्रेजी के एक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर छपी एक तस्वीर से, जिसमें एक बुजुर्ग महिला सिक्कों की थैली दिखा रही हैं। अखबार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की इन महिला को 2000 रुपये के बदले 1 रुपये के सिक्कों से भरा बैग दे दिया गया था, जिसे बदलवाने के लिए वो मोहनलालगंज बैंक पहुंची। आगे बात करें तो सभी अखबारों में नोटबंदी के पैसा, नोटबंदी के बाद पैसा निकाल सकने की नई सीमा पर खबर दी हुई है। बैंकों से अब 4500 की जगह केवल 2000 रुपये के पुराने नोट ही बदलवाए जा सकेंगे। शादी के लिए एक परिवार 2.5 लाख रुपये तक निकाल सकता है, जो कि परिवार के किसी एक सदस्य के खाते से ही निकाले जा सकते हैं। किसान अपने KYC कंप्लायंट खाते से प्रति सप्ताह अब 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। साथ ही एक और खबर है जो कई अखबारों में छपी है कि अब पेट्रोल पंपों पर भी अपने डेबिट कार्ड के जरिए लोग 2000 तक का कैश निकाल सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार नोटबंदी के कारण केरल में डेयरी व्यवसाय काजू की खेती में लगे सैकड़ों परिवारों को भूखा रहना पड़ सकता है। खबर है कि केरल में दूध कोऑपरेटिव बैंक से पैसा निकालने पर लगी सीमा के कारण बीते सप्ताह जरूरी पैसा नहीं निकाल सके थे, जिसके बाद वे काम करने वाले परिवारों को, लोगों को पैसा नहीं दे पाए और आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। इसी अखबार में छपी एक अन्य खबर के अनुसार दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे व्यापार मेले में अंतर्राष्ट्रीय पेवेलियन में कम ही लोग जा रहे हैं। मेले में स्टॉल लगाने वाले कई लोगों का कहना है कि लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो इस कारण से वे मेले में खरीदारी कर नहीं पा रहे हैं। सरकार नोट बैन को 3 दिनों के भीतर वापस ले, नहीं तो इसके विरोध में आंदोलन होगा, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। दी पायनियर अखबार में छपी एक खबर के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी फलों की मंडी आजादपुर मंडी में आयोजित एक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि वे काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन इसके लिए आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला कहा है। कागज है न स्याही, कैसे छपेंगे नए नोट, ये खबर छपी है हिंदी के अखबार जनसत्ता के पहले पन्ने पर। अखबार लिखता है कि जरूरत भर नए नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अभी तक टेंडर की प्रक्रिया नहीं शुरू कर पाया है। मैसूर में भारत सरकार की पेपर मिल में प्रयोग के तौर पर थोड़े करेंसी कागज बनाए गए थे, उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। वहां मात्र जरूरत का 5% कागज तैयार करने भर की क्षमता है, बाकी 95% कागज के लिए निर्भरता जो है वो इंग्लैंड, जर्मनी और अमरीका की कंपनियों पर है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी एक खबर में कहा गया है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में राज्य बोर्ड के अंतर्गत स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 9 और कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा पास कर दिया जाएगा। इसी साल जुलाई में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद से घाटी में तनाव, प्रदर्शनों और कर्फ्यू के कारण बीते 4 महीने से स्कूल बंद हैं।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानसी दास। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव और बस्तर के आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी के खिलाफ समन जारी किए हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसे पलटा नहीं जा सकता। सीरिया पर निगरानी रखने वालों का कहना है कि अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बमबारी और गोलीबारी में 25 नागरिकों की मौत हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, उन्होंने इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया है। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि एक शादी के दौरान आत्मघाती हमलावर के बम धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दाश। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।